सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा से हम तृप्ति दीप प्रकरण में उस ज्ञानी की जो तृप्ति है उस तृप्ति के विषय में हम विचार कर रहे थे। वो ज्ञानी कृतिकृत्य होता है, जो प्रापणीय उसको प्राप्त कर लेता है, इसलिए उस ज्ञानी की जो कृतिकृत्यता है वो कृतिकृत्यता उस कृतिकृत्यता के विषय में ये कह दिया, वो कृत और कृत्य क्या है, कृतकृत्य क्या है। कृत्य अर्थात करने योग्य और कृत शब्द का अर्थ कर लिया, करने योग्य जो था उसको कर लिया। करने योग्य क्या था तो ये बताया कि करने योग्य इस लोक की जो इष्ट और इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति, वो कौन है, इष्ट कृष्यादि वाणिज्यादि अर्थात खेती करना व्यापार करना, ये इस लोक का क्या है इष्ट था, और अनिष्ट की निवृत्ति, और परलोक स्वर्ग, स्वर्ग का साधन यज्ञ याग आदि उपासना, इसको क्या है कर लिया है। और क्या कर लिया है जो करने योग्य, श्रवण मनन निधि ध्यासन, ये जो करना था उसको भी क्या है कर लिया। जो करने योग्य था यही था, इस लोक का साधन, परलोक का साधन और मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन, ये क्या है करने योग्य था, उसको अब क्या है कर लिया। करने के कारण उस ज्ञानी को कहते हैं ये कृतकृत्य हो गया, अब इस ज्ञानी को करने जैसा अब कुछ शेष नहीं रहा, जो करना था उसको कर लिया। इसलिए उस ज्ञानी के लिए क्यों करना जैसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि जिसके लिए करना था वो ब्रह्मानंद क्या उसको प्राप्त हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, ब्रह्मानंद का साक्षात्कार होने के कारण वो अब जो करने योग्य है अब उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ करना था उस ब्रह्मानंद के साक्षात्कार के लिए करना था, अब ब्रह्मानंद का साक्षात्कार हो गया तो अब उसको करने की जरूरत नहीं है। ये कहे के ये बताया कि जो कृतकृत्य हो जाता है उस कृतकृत्यता को, उस कृतकृत्य के कारण जो उसको तृप्ति हो गई, उस तृप्ति को वो अकृतकृत्यता को स्मरण करते हुए उस अपनी तृप्ति के विषय में वो सोचता है और मानता है कि क्या है, मैं जब कृतकृत्य नहीं था उस समय में मैं निरतिशय आनंद को प्राप्त नहीं था, खंडित आनंद को प्राप्त था, अर्थात खंडित सुख को प्राप्त था। मतलब वो जो आनंद है वो सुख है वो कैसा था, खंडित था, और उस सुख में परिश्रम अधिक था और सुख कम था। कि तो आज जो है मैं पूर्ण रूपेण अब आनंद में ही हूं, अब कोई मेरे जीवन में कोई परिश्रम अब नहीं है। 54वें श्लोक में बताया था कि ये तदेतत् कृतकृत्यत्वं प्रतियोगी पुरस्सरम् अनुसन्दधदेवाय मेवं तृप्यति नित्यशः। वो तृप्त नित्य तृप्त रहता है, क्या सोचते हुए, क्या अनुसंधान करते हुए, अर्थात किसका स्मरण करते हुए, जो अकृतिकृत्यता का स्मरण करते हुए अपनी कृतिकृत्यता से जो मिली हुई तृप्ति उसको क्या है वो अनुभव करता है, उसका पहले का स्मरण करते हुए। वो कैसा वो अनुसंधान करता है, कैसा अर्थात स्मरण करता है और अपने स्वरूप का वो अनुभव करता है, तृप्ति का अर्थात अपने स्वरूप का साक्षात्कार कैसे करता है, ते 55वें श्लोक में बताया। दुखिनो ज्ञा संसरंतो कामम पुत्राद्यपेक्षया परमानंद पूर्ण अहम संसारामि किमिच्छया। वो ये इस तरह का स्मरण करता है, ये जो अज्ञानी जीव दुखी जीव क्या है, पुत्रादि की कामनाओं की अपेक्षा से क्या है, इच्छा से वो संसार करता है, संसार में आता है। किंतु मैं तो दुखी नहीं हूं, अब तो मैं परिपूर्ण हो गया हूं, परमानंद रूप में अब मैं स्थित हो गया हूं, उस परिपूर्ण परमानंद ही मैं हूं। अब मुझे क्या है, संसारामी की इच्छा या मैं किस इच्छा से संसार में आऊंगा, अर्थात मैं किस इच्छा से संसार करूंगा, हा? मुझे संसार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ही स्वयं परमानंद पूर्ण हो गया, परमानंद रूप हो गया। अभी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, कुछ करना आवश्यक नहीं है, अब कोई शेष नहीं रहा मेरे लिए। इसके बाद जो है 56वें श्लोक में बताया, स्वर्गादि अर्थम कर्मानुष्ठान कर्मानुष्ठातृभ्यो वैलक्षण्यम आह। ये जो स्वर्गादि के अर्थ के लिए, स्वर्गादि प्रयोजन के लिए जो कर्मानुष्ठान करने वाला अज्ञानी, उससे ये जो ज्ञानी है ये कैसा है, विलक्षण है, दोनों के विचारों में भावनाओं में अंतर होता है, अंतर पड़ जाता है। तो कहते हैं जो अज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, परलोक की इच्छा से कर्म करते रहते हैं। वो तो ये सोचता है अज्ञानी कि मैं परिच्छिन्न हूं और मुझे स्वर्ग प्राप्त नहीं है, तो मुझे स्वर्ग प्राप्त के लिए क्या करना चाहिए, तो स्वर्ग प्राप्ति के साधनों को करना चाहिए, वो ऐसा सोचता है। और ज्ञानी क्या सोचता है कि मैं तो सर्वात्मक हूं, मैं ही सब कुछ हूं, चाहे यह लोग परलोक सब कुछ मैं हूं, सर्वम सब कुछ मैं हूं। तो जब सब कुछ मैं ही हूं, सर्वात्मक ही, स्वर्ग भी मैं हूं और स्वर्ग के जितने भी आनंद है वो भी मैं हूं, तो जब सब कुछ मैं हो गया अब मैं किसको प्राप्त करूंगा, मेरे से अलग तो कुछ रहा नहीं है, संसार का ऐसा कोई आनंद है कि जो मेरे से अलग नहीं है, यदि होता तो उसके लिए मैं प्रयत्न करता। अब जो भी कुछ आनंद है वो आनंद मुझसे अलग नहीं है, स्वर्ग का आनंद भी मैं ही हूं, यह लोक का आनंद भी मैं ही हूं, जो भी आनंद है सुख है वो सब कुछ मैं ही हूं, जहां का भी आनंद हो जहां का भी सुख हो वो मैं ही हूं, सर्वलोकात्मक मैं सर्वलोकात्मक हूं। इसलिए वो कहता है मैं किस लिए अनुष्ठान करूंगा, किस प्रकार से और किसके लिए अनुष्ठान करूंगा, अब मेरे से अतिरिक्त तो कुछ बचा ही नहीं है, तो इसलिए मैं किसके लिए अनुष्ठान करूंगा, अर्थात किसी के लिए अनुष्ठान नहीं करूंगा, सब कुछ मैं ही हो गया हूं। इस तरह का क्या है, ज्ञानी की भावना और ज्ञानी की सोच में, ज्ञानी के निश्चय में इस तरह का क्या है प्रकार होता है, और अज्ञानी के भावना में विचार में वो अलग प्रकार होता है। वो प्रकार है मैं परिच्छिन्न हूं, अज्ञानी सोचता है मैं परिच्छिन्न हूं और मुझे क्या है स्वर्ग के सुख के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ये उसका निश्चय होता है। तो निश्चय में जो प्रकार है अलग अलग हो जाता है, ज्ञानी के निश्चय में अलग प्रकार है, अज्ञानी के निश्चय में अलग प्रकार है, दोनों की सोच में क्या है प्रकार अलग है, भावनाओं में क्या है प्रकार अलग है, अलग अलग भावना है, उसी को लेकर के श्लोक आता है। अनुतिष्ठन्तु कर्माणि अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोक इयासवः परलोक इयासवः सर्वलोकात्मकं कस्मात् सर्वलोकात्मकः कस्मात् अनुतिष्ठामि किं कथम् अनुतिष्ठामि किं कथम्। ये दोनों की विलक्षणता बताइए इसमें। अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोक यासवः, जो परलोक की इच्छा करने वाला वो क्या करता है, कर्म का अनुष्ठान करता है। अर्थात जब ये इस लोक में होता है तो उस परलोकों को अपने से अलग समझता है और मुझे वो प्राप्त करना चाहिए। उस प्राप्ति के लिए क्या साधन है, तो कर्म है, उस कर्म को मुझे करना चाहिए, वो ऐसा क्या है सोचता है। और ज्ञानी कहता है सर्वलोकात्मक, वो तो सर्वलोकात्मक हो गया, सब कुछ वही हो गया। होने के कारण कस्मात् अनुतिष्ठामि किम कथम, अर्थात कैसे और किस प्रकार से मैं अनुष्ठान करूंगा। अनुष्ठान करने के लिए कुछ शेष रहता ही नहीं है, क्योंकि जब कुछ मैं ही सब कुछ हो गया, मेरे से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। मैं ही होने के कारण अब मेरे लिए कोई अनुष्ठान रहता नहीं है। ये ज्ञानी और अज्ञानी में क्या है विलक्षणता दिखा रहे। ज्ञानी अज्ञानी से विलक्षण है, अर्थात अलग है, विशेष है। आगे कहता है कि चलिए वो करता नहीं किंतु स्वार्थ के लिए तो न करे, किंतु परार्थ के लिए तो करे, क्यों नहीं कर सकता, करना चाहिए। इस विषय में क्या है शंका करता है। ननु स्वार्थ प्रवृत्ति अभावे भी परार्थ प्रवृत्ति किम न स्यात्। अरे अपने लिए तो न करे कि दूसरे के लिए तो करे, ये शंका है। तो कहते हैं इति अशंकया अधिकार अभावात सापि नास्ति इत्यदा आह। कहते हैं वो दूसरे के लिए करे ये बात बनती ही नहीं है। क्यों नहीं बनती, क्योंकि ज्ञानी का वो अधिकार नहीं है। अधिकार न होने के कारण कहते हैं वो दूसरे के लिए भी नहीं करेगा। अब इसको थोड़ा सा स्पष्ट करके श्लोक में बताते हैं। व्याचक्षताम् ते शास्त्राणि व्याचक्षताम् ते शास्त्राणि वेदानध्याय पयन्तु वा वेदानध्यापयन्तु वा येत्राधिकारिणो मे तु येत्राधिकारिणो मे तु नाधिकारो क्रियत्वतः नाधिकारो क्रियत्वतः। व्याचक्षताम ते शास्त्राणि अर्थात व्याचक्षताम अर्थात व्याख्या करे, बोले, शास्त्र के बारे में बोलते रहे। वेदाध्ययन अर्थात वेद अध्ययन करे, अध्यापन करे। कौन करे, जिसको लगता है कि मैं क्रियावान हूं। क्या है, जिसको लगता है कि मैं क्रियावान हूं, मैं क्रिया करने वाला हूं, ऐसा जिसको लगता है वो शास्त्र अध्ययन करे, शास्त्र की व्याख्या दे दे, व्याख्यान करे शास्त्र के विषय में, शास्त्र का वेद अध्ययन अध्यापन करता रहे। तो वो क्रियावान करते हैं, किंतु मैं जो हूं वो अधिकारी है, जो अपने आप को क्रियावान समझते हैं वो उसके अधिकारी है। अर्थात भले ही अपने लिए न करे किंतु इतरों के लिए करे, तो इतरों के लिए क्या होना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। तो वो क्रिया जिसमें होगी अथवा जो मैं इस क्रिया को करने वाला हूं, अर्थात मैं क्रियावान हूं, अध्यापन अध्ययन करने वाली जो क्रिया है वो क्रिया मुझ में होती है, अर्थात उस क्रिया वाला मैं हूं, अध्ययन अध्यापन वाली जो क्रिया है उस क्रियावान मैं हूं, ऐसा जो समझता है वो क्रिया करे दूसरे के लिए। अपना खुद का हो गया किंतु तो दूसरे के लिए क्या है, वो क्रिया करे। क्यों करे, क्योंकि वो अपने आप को मैं क्रियावान हूं ऐसा वो समझता है, मुझे क्या है क्रिया करनी चाहिए क्योंकि मैं क्रिया वाला हूं, ऐसा जो समझता है वो उसका अधिकारी है। मैं तो निष्क्रिय हूं, वो ज्ञानी क्या कह रहे हैं, मैं निष्क्रिय हूं। तो ज्ञानी क्यों करेगा, जब अपने आप को निष्क्रिय मान रहा है, मुझ में कोई क्रिया नाम की वस्तु ही नहीं, क्रिया ही होती नहीं मेरी, मैं निष्क्रिय हूं। वो कहते मैं तो न, अर्थात वो अधिकारी है, मैं तो अधिकारी नहीं हूं। क्यों, क्योंकि अक्रियत्वतः मैं अक्रियवान हूं, मुझ में कोई क्रिया होती नहीं है। तो जब मुझ में कोई क्रिया ही नहीं होती है तो मैं क्या क्रिया करूंगा दूसरे के लिए। जो समझता है कि मैं क्रियावान हूं वो करे, पर मैं क्रिया करूंगा नहीं। क्यों, क्योंकि मैं अक्रिय हूं तो मैं क्या क्रिया करूंगा, मैं निष्क्रिय हूं, मैं स्थिर हूं, व्यापक हूं, मेरे में किसी प्रकार का कोई चलन नहीं है। मुझ में यदि चलन होता तो मैं और किसी के लिए चलन करता अथवा अपने लिए मैं चलन करता क्रिया करता, किंतु मैं कैसा हूं, निष्क्रिय हूं, निश्चल हूं, इसलिए मुझ में कोई भी क्रिया नहीं है, चाहे अपने लिए हो चाहे दूसरे के लिए हो, वो कोई क्रिया ही नहीं होगी। वो अपेक्षा किस अपेक्षा से, अपेक्षा यदि करें, अपेक्षा वहां करते हैं जहां कुछ अपने लिए कुछ चाहता है। अपेक्षा जब करता है ना, किसी अपेक्षा से करते हैं इसका मतलब आपका कुछ स्वार्थ है तभी आप कुछ कर रहे हैं। ज्ञानी में कोई अपेक्षा ही नहीं ना, वो तो पूर्ण हो गया ना, उसकी अपेक्षा ही समाप्त हो गई। अपेक्षा तो अज्ञानियों में थी, ज्ञानियों में अपेक्षा नहीं होती है, वो निरपेक्ष हो जाता है, कोई अपेक्षा नहीं रहती उसमें। अभी उसके विषय में चर्चा करेंगे, उसी के विषय में आ रहा है अभी। ननु स्वदेह भरणार्थम भिक्षा हरणादिकम परलोकार्थ स्नानादिकम च भवता क्रियमाणम उपलभ्यते। आप कैसे बात कर रहे हैं, स्वदेह रक्षणार्थम भिक्षा हरणादिकम, अरे अपने शरीर की रक्षा के लिए भिक्षा मांगने जाएगा कि नहीं। ज्ञानी होने का मतलब ये नहीं कि वो ऐसे कैसे बैठेगा, भिक्षा तो करेगा ना वो। और परलोक की जो साधन है कौन, गंगा जी है, तीर्थ क्षेत्र है, क्या वहां नहीं जाता है क्या ज्ञानी, गंगा में स्नान नहीं करता है क्या, वो तो करता है, तो ये क्रिया नहीं है क्या, भिक्षा करने के लिए जाना ये क्रिया नहीं है क्या, स्नान करना क्रिया नहीं है क्या, तो ये तो क्रिया दिख रही है हमको, उपलब्ध प्रत्यक्ष दिख रही क्रिया उसमें, तो इसलिए आप उसको अक्रियवान कैसे कह सकते हो। तो कहते हुए अतो अक्रियत्वम असिद्धम, हमें तो नहीं लगता वो अक्रिय करके, वो तो क्रियावान दिख रहा है। इति आशंके, ये शंका करके समाधान दे रहे, क्या समाधान दे रहे, तदापि स्वदृष्ट्या नैव अस्ति किंतु अन्यैरेव कल्पितमिति। यहां ग्रंथकार ये कह रहे हैं कि वो जो क्रिया दिख रही है वो क्रिया उस ज्ञानी की दृष्टि से नहीं है, वो दूसरे की दृष्टि से भली हो कि तो उसकी दृष्टि वो क्रिया नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। वो तो आपकी दृष्टि से क्रिया है, क्यों, क्योंकि आप जैसा चाहे देख सकते किसी के विषय में, हम एक ही व्यक्ति होता है, एक ही व्यक्ति को क्या है, कोई चोर देखता है, कोई सज्जन देखता है, और ये बड़ा अच्छा है, कोई ऐसा देखता है, कोई दूसरा उसको और देखता है। कि जो भी व्यक्ति अपने विषय में जो समझ है उसकी, वो समझ वही समझ दूसरे में है, वो तो ऐसा नहीं होगा। सब अपने अपने क्या है ज्ञान के अनुसार अथवा अनुभव के अनुसार, बस अपने अपनी दृष्टि अपने अपनी बुद्धि के अनुसार देखता है। किंतु ज्ञानी की दृष्टि से क्या है, मैं क्रियावान हूं, ऐसा नहीं है। वो तो दूसरी की दृष्टि से इस तरह का है, स्वदृष्टिया नहीं बाजती, उसके दृष्टि से मैं क्रियावान हूं ऐसा है ही नहीं है, उनकी दृष्टि से मैं अक्रियवान हूं ऐसा निश्चय है। दूसरी की दृष्टि से भले वो क्रियावान दिखे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। कौन किसके बारे में समझ रखता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। कोई सज्जन है, उस सज्जन के बारे में कोई समझ रखता है कि दुर्जन है, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई इसी तरह ज्ञानी अपने विषय में उसने तो अनुभव कर लिया है कि मैं कैसा हूं, निष्क्रिय हूं। जब मैं निष्क्रिय हूं उसका निश्चय है अपने आप में, तो दूसरे ने कुछ भी समझे तो क्या फर्क पड़ना है, कुछ फर्क पड़ना नहीं है। हाँ, नहीं वो किंचित करो मीति कहते ना, वो कुछ करता ही नहीं, गीता में कह दिया ना, हाँ, पश्यन् श्रृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छे शोभे शोषन् प्रलपन विसृजन गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन् नपि। वो तो हाँ, वो सब क्या है, करता हुआ सा लगता है, वास्तविक नहीं है। देखिए, जो कलाकार होता है, अब कलाकार जब किसी, मान लीजिए कृष्ण का अभिनय कर रहा है, तो कृष्ण का अभिनय कर रहा है और कृष्ण का वेशभूषा भी धारण की उसने, ये वेशभूषा धारण करते हुए वो उस तरह का अभिनय भी कर रहा है, तत्पर भी उस समय भी मैं एक और कोई हूं, ये निश्चय है कि ना, उसमें निश्चय है। जो भी कलाकार हो, वो कलाकार को ये पता है कि मैं इससे अलग ही हूं, भले ही मैं क्या है, ये मुझ में दिख रहा है, अपना निश्चय उसका निजी रहता है। अब दूसरी की दृष्टि से वो कृष्ण दिख रहा है, कि तो अपने दृष्टि से वो क्या है, वो तो अपने आप को जो है वो मान रहा है। जो कलाकार होगा, जिसका अपना कोई मान लीजिए होगा, मान लीजिए कृष्ण का अभिनय करने वाले जैसे नीतीश भारद्वाज, वो तो अपने को नीतीश भारद्वाज ही मानते होंगे ना, क्या कृष्ण मान रहे होंगे, पर दूसरे क्या कह रहे, अरे देखो कितना सुंदर है कृष्ण गारो, कितना बढ़िया कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, किंतु वो तो जान रहे ना मैं कृष्ण नहीं हूं। इसी तरह ज्ञानी भी, मैं निष्क्रिय हूं, दूसरे कह रहे क्रियावान, एक तरह का मान लीजिए। अब वो अभिनय जैसी बात रही, जब ज्ञान हो गया उनको, वो कर्म फल का जो भोग है, उस भोग के लिए मात्र एक अभिनय जैसी बात है और कुछ नहीं, बस नाटक है जैसे। उसी के विषय में यहां पर चर्चा करते हैं श्लोक के द्वारा। निद्रा भिक्षे स्नान शौचे, निद्रा भिक्षे स्नान शौचे, निच्छामि न करोति च, निच्छामि न करोति च, द्रष्टारश्चेत् कल्पयन्ति, द्रष्टारश्चेत् कल्पयन्ति, किं मे स्यादन्य कल्पनात्, किं मे स्यादन्य कल्पनात्। निद्रा भिक्षे स्नान शौचे, नेच्छामि न करोति च। कहता है न मैं निद्रा की इच्छा करता हूं, न निद्रा लेता हूं करता हूं, न मैं भिक्षा की इच्छा करता हूं, न भिक्षा करता हूं, न मैं स्नान की इच्छा करता हूं न स्नान करता हूं, न मैं पवित्र होने की इच्छा करता हूं न पवित्र होता हूं। दृष्टारश्चित कल्पयन्ति, अब स्नान हो रहा है गंगा जी में तो सामने वाला कह रहे कि ये पवित्र हो रहे, अब वो उसकी दृष्टि है, मैं तो कुछ स्वीकार ही नहीं करता हूं, न मैं पवित्र हूं न अपवित्र हूं, न मुझे मैं भिक्षा कर रहा हूं न भिक्षा करने वाला भी हूं, दोनों भी नहीं, न भिक्षा करने वाला भी हूं और न करने वाला भी मैं नहीं हूं, मेरे में तो पूर्ण रूपे न है, ये निश्चय है। दृष्टारश्चित कल्पयन्ति, देखने वाला यदि कोई कल्पना करता है तो उसको वो क्या कर सकते हैं, वो कल्पना करे उसको कौन रोक सकता है, अपने बारे में कोई कल्पना करता है तो उसको हम रोक सकते हैं क्या, नहीं रोक सकते, वो कल्पना करता रहे। किम में क्या, उसकी कल्पना से मुझ में क्या होगा, अन्य कल्पना किम में क्या, मेरा क्या होगा दूसरे की कल्पनाओं से, ये ज्ञानी का क्या 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 होता है, निश्चय होता है। भले दिखता है कि वो स्नान कर रहा है, भिक्षा कर रहा है, निद्रा का ले रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं, तो वो दूसरे की दृष्टि से, ज्ञानी की दृष्टि से वो बातें नहीं है। अन्य कल्पनयापि बाधो अस्ति इति आशंका तद अभावे दृष्टांतम आह। कहते हैं अब दूसरी कल्पना करते हैं तो उनका बोध बाद नहीं होगा, अर्थात तो उनको जो ज्ञान हो गया मैं निष्क्रिय हूं, अक्रिय हूं, मुझ में सब कुछ होता ही नहीं है, मैं तो परिपूर्ण हूं, ये जो बोध है उनको, अन्य की कल्पनाओं से क्या ये बोध समाप्त नहीं होगा। अन्य कल्पनाया भी बोधो अस्ति अशंकया तद अभावे दृष्टांतम आह। हाँ, बाधो बोध ने बाधो अन्य की कल्पनाओं से क्या उनके बोध में निष्क्रियता में बाधा नहीं आएगी, अर्थात उनकी निष्क्रियता बाध नहीं होगी, दूसरे ने कल्पना करने पर क्या बाध नहीं होगी उनकी अपनी निष्क्रियता, तो कहते हैं ऐसा नहीं है, दूसरे की कल्पना करने से अपना निर्णय बाधित होता नहीं है। तद अभावे दृष्टांतम आह, अर्थात दूसरे की कल्पना के करने से अपने स्वरूप में जो है बाधा आती नहीं है, बाध होता नहीं है, अपना निश्चय अपना स्वरूप बाध होता नहीं है। कैसे नहीं होता, दृष्टांत के द्वारा समझा रहे। गुंजा पुंजादि दैहेत, गुंजा पुंजादि दैहेत, नाना नान्योरूपितवह्निना, नान्योरूपितवह्निना, नान्यारोपित संसार, नान्यारोपित संसार, धर्मानेव महं भजे, धर्मानेव महं भजे। गुंजा पुंजादि, एक पेड़ को फल आते हैं, हाँ, लाल और काला, आधे से ऊपर क्या होता है काला होता है और ऊपर लाल लाल होता है, वो ऐसा लाल होता है कि मान लीजिए उसका ढेर है, यदि उसका पड़ा हो तो दूर से देखेंगे तो क्या है जैसे कोयला, आधा कोयला काला और लाल दिखता है जब आग में डालते हैं, उसी तरह क्या है वो दिखने लगता है, तो उसी को लेकर के यहां पर समझा रहे। गुंजा पुंजादि दह्येत, जैसे कोई कह रहा है देखो अरे जल रहा है लाल लाल, पुंज पुंज जल रहा है दूर से। किसी ने आरोप किया वन्नी से क्या है ये जल रहा है, क्यों वो दिख रहा है ऐसा, वो आग जैसा जैसे लकड़ी के ऊपर आग होती लाल दिखती ना, तो इसी तरह जो गुंज का जो समूह है राशि है जब देखता है उस राशि को दूर से तो कहता है आग से जल रहा है। अब उसने आरोप किया ये जल रहा है कर दिया। अब उसके आरोप करने से दिख रहा है वो जलता हुआ ऐसा लगता है दूर से, अरे आग है इधर। अब वो आग का आरोप करने पर क्या वो गुंज जलेगी, वो फल जलेगा नहीं। किसी के आरोप करने से वो देख आग जैसा दिख रहा है और उसने आरोप किया कि आग क्या है ये जल रहा है, तो आवन्नी का आरोप करके आग का आरोप करके वो वास्तविक जलेगा क्या? आरोप करने से वो तो जलना संभव नहीं ना क्रिया। इसी तरह ज्ञानी में आरोप करने मात्र से वो आरोप तो सिद्ध नहीं ना होगा। ज्ञानी भिक्षा कर रहा है तो क्रिया हो रही, तो वो दूसरे कह रहे के क्रिया हो रही है उसको दिख रहा है किंतु उनमें वो क्रिया नहीं हो रही है। नान्य आरोपित संसार धर्म धर्मान, वो अन्य के द्वारा आरोपित जो संसार धर्म है वो संसार धर्म उनमें क्या है वास्तविक सिद्ध नहीं हो सकते, दूसरे में आरोप करने मात्र से सिद्ध नहीं होता है। अर्थात दूसरे के द्वारा जो जो धर्म आरोपित किए है वो धर्म उसके होते नहीं है चाहे कितने भी आरोप करे। कोई सज्जन है उसको चोर कहने मात्र से चाहे हजार बार चोर कहे तत्पर भी वो चोर सिद्ध नहीं होगा, सज्जन तो सज्जन ही है। अरे सफेद को लाल काला कहने से कितने बार काला कहने से वो सफेद काला होगा नहीं ना होगा, हम आरोप करने मात्र से तो नहीं होता है ना, यही कह रहे जैसे गुंजा का दृष्टांत दिया उन्होंने। ननु फलांतर इच्छा भावे कर्म अनुष्ठम मा भूत, चलिए आप जो बोल रहे हैं कि अब जो है कोई इच्छा नहीं रही उस ज्ञानी की, फलांतर इच्छा भावे, फलांतर इच्छा का अभाव है तो उसको उसके द्वारा कोई कर्म नहीं होगा कोई क्रिया नहीं होगी। हम मान लेते कि अब क्यों क्रिया नहीं है तो उसमें कोई फल की इच्छा ही नहीं है इसलिए क्रिया नहीं होती, ऐसा कुछ देर के लिए मान लीजिए। फलांतर क्या है इच्छा अभाव है, अपने से भिन्न किसी फल की इच्छा का क्या है अभाव है उनके भीतर, इसलिए कर्म भले नहीं है किंतु तो तत्व साक्षात्काराय श्रवणादिकम कर्तव्यम एव, किंतु तत्व का साक्षात करने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन रूप ये क्रिया वो तो होनी चाहिए उसको करनी चाहिए। शंका क्या है फलांतर की इच्छा नहीं तो कर्म नहीं होगा किंतु श्रवण मनन निधिध्यासन तो क्रिया होगी उसके द्वारा होनी चाहिए उसके द्वारा, किसके लिए तत्व साक्षात्कार के लिए, तत्व साक्षात्कार के लिए क्रिया तो होनी चाहिए। तो कहता है ऐसा नहीं है कर्तव्यम इति आशंका, ये कर्तव्य होना चाहिए ऐसी शंका है, तो कहता है ये भी नहीं होगा क्यों अज्ञानात् अज्ञानादि अभावात् श्रवणादि कर्तृत्वम अपि नास्ति, उसमें जो है अज्ञान का अभाव होने के कारण ज्ञानी में श्रवणादियों का कर्तृत्व का अभाव है और कर्तृत्व का जहां अभाव होता है वहां क्रिया होती नहीं है। अब उस ज्ञानी में अज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं ना, जहां अज्ञान होता है उस अज्ञान को हटाने के लिए क्रिया करनी होती है किंतु इनको तो बोध हो गया ज्ञान रूप हो गए बोधात्मा हो गए, तो इसलिए क्या है अज्ञान अभाव आता उनके भीतर अज्ञान का अभाव होने के कारण जो ज्ञान के लिए श्रवणादि क्रिया करनी है वो संभव नहीं है। यदि अज्ञान होता जैसे अभी हम आप लोग पूर्ण रूपेण उस आत्म बोध में क्या है, नहीं पहुंचे, आत्मज्ञान नहीं हुआ। इसलिए अभी हमें क्या करना पड़ रहा है, क्रिया करनी पड़ रही है, श्रवण मनन निधि ध्यान पूजा पाठ करना पड़ रहा है, व्रत करना पड़ रहा है। किंतु ज्ञानी ये सब किसके लिए था, ज्ञान के लिए था। अब उस ज्ञान हो गया तो अब किसके लिए क्रिया करेगा, जो कुछ करना था ज्ञान के लिए करना था, मोक्ष के लिए करना था, वो मोक्ष तो प्राप्त हो गया, ज्ञान हो गया। अब जिसके लिए करना था वो प्राप्त हो गया, अब किसके लिए क्रिया करेगा, अर्थात उसके लिए कोई क्रिया नहीं रहेगी। और क्रिया के लिए कर्तापन चाहिए, वो कर्तापन भी नहीं रहेगा उसमें, तो वो अपने आप को अकर्ता मानता है, तो क्रिया कहां से होगी। जो कर्ता माने वो क्रिया करे। जैसे घर का मुखिया वो सोचता है कि इस परिवार का कर्ता धर्ता मैं हूं, जब कर्ता धर्ता मैं हूं तो परिवार का पालन पोषण करने के लिए जाना पड़ेगा कि नहीं, काम करने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि करता हूं इस परिवार का मैं, तो क्रिया करेगा। ज्ञानी किसी भी विषय में कर्ता मानता ही नहीं अपने आप को, किसी भी विषय में, चाहे दुनिया के विषय में चाहे अपने विषय में, किसी विषय में कर्ता मानता है नहीं। जब कर्ता ही नहीं मानता तो क्रिया कहां से होगी, संभव नहीं। नास्ति इत्येत आह, इसी विषय में इस श्लोक में बता रहे हैं। श्रृण्वन् ज्ञात तत्वास्ते, श्रृण्वन् ज्ञातस्तत्वास्ते, जानन् कस्माच्छृणोम्यहम्, जानन् कस्माच्छृणोम्यहम्, मन्यन्ताम् संशयापन्ना, मन्यन्ताम् संशयापन्ना, न मन्येऽहम् संशयः, न मन्येऽहम् संशयः। शृण्वन्तु अज्ञात तत्वास्ते, अरे श्रवण तो वो करे जिसको क्या है, अज्ञात है अपना स्वरूप, वो श्रवण करे, मनन करे, निधिध्यासन करे। जानन कस्मात् शृणोमि अहम्, अब मैं जानता हूं अपने स्वरूप को, तो मैं अपने मैं जब जानता हूं तो अब उसको जानने के लिए क्या दोबारा श्रवण करूं। एक बार जान लिया, जानने के बाद फिर उसको जानने के लिए और क्या श्रवण करो, वो तो पिष्ट पीसन जैसे हो गया, और जो पीसा हुआ आटा उसको क्या पीसना है। तो जो जिस श्रवण के द्वारा जान लिया फिर वही श्रवण बार बार करता रहो, वो तो बेकार का है, फालतू का परिश्रम है। वही कह रहे जानन कस्मात श्रवणमि अहम्, जब मैंने जान ही लिया तो अब श्रवण किसके लिए, श्रवण तो जानने के लिए था, वो तो जानना तो हो गया, अब श्रवण कहां से रहा। श्रवण नहीं होगा, मनन नहीं होगा, निधि ध्यासन नहीं होगा। मन्यंताम संशयापन्ना, अब जो संशय में पड़ा हुआ वो क्या है, मनन करे, श्रवण करे, मुझे तो जो है संशय भी नहीं है। मैंने अपने स्वरूप के विषय में जो जान लिया, जानने के कारण मुझे बोध हो गया, अब श्रवण की जरूरत नहीं है। नहीं कहेंगे आपको मनन तो करना चाहिए ना, बोले मुझे मनन भी करने की जरूरत नहीं, क्यों, मुझे अपने बारे में कोई संशय नहीं है। मेरे अपने बारे में संशय होता है कि भाई मैं आत्मा हूं क्या, शरीर हूं क्या, सचमुच में आत्मा हूं, ये संशय होता तो मैं मनन कर लेता, विचार कर लेता, परंतु तो मुझे अपने बारे में कोई संशय नहीं ना। जब संशय नहीं तो मैं अपने बारे में मनन भी कैसा बन सकता है, नहीं बन सकता है। न मन्ने अहम् असंशया, मुझे संशय ही नहीं है मेरे अपने बारे में, इसलिए मेरे लिए मनन रूप क्रिया भी क्या है, बनती नहीं है। टीका देख लीजिए, अज्ञात तत्वाहा, अर्थात उसका अर्थ कर रहे अज्ञातम, क्या अज्ञातम, ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम तत्वम, यही ते तथा भूता श्रवणम कुर्वन्तु, जिसको ब्रह्मात्मैक्य अर्थात ब्रह्म और आत्मा इन दोनों का जो ऐक्य है, इस ऐक्य का बोध नहीं है, वो व्यक्ति क्या करे, श्रवण करता है किसके लिए, हम दोनों एक है ये समझने के लिए श्रवण करे। ब्रह्मात्मक्यत्व लक्षणम, अर्थात वो ब्रह्म और आत्मा एक है, ऐसा स्वरूप जो तत्व है, ये स्वरूप बोध है तत्व, यही ही अर्थात जिसके द्वारा क्या है अज्ञात है, वो ब्रह्म और आत्मा एक है, इसका अज्ञान जिसमें है उसको जानने के लिए क्या श्रवण करे वो, ते तथा भूता श्रवणम कुर्वन्तु, वो श्रवण करे। अब मुझे तो क्या है बोध हो गया है, मैं और वो ब्रह्म एक है, ये बोध हो गया। अब बोध हो गया तो आप क्या श्रवण करें कि वो ब्रह्म और आत्मा एक है, वो आत्मा और ब्रह्म एक है। और जब पता ही लग गया तो अब क्या श्रवण करना, एक बार हो गया बोध हो गया तो क्या बार बार श्रवण करेंगे। जिसको अज्ञात है वो श्रवण करता रहे, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक श्रवण करता रहे। अब मुझे ज्ञान हो गया, अब मुझे श्रवण करने की जरूरत नहीं है। तत्त्वम इत्थम अन्यथा वा इति संशयवंतो मननम कुर्वन्तो, नहीं चलो आपने तो सुन लिया क्या है ब्रह्मा और आत्मा एक है इसलिए श्रवण नहीं बनता है। चलो आपने सुन लिया कि ब्रह्मा और आत्मा एक है, उसको सुनने की जरूरत नहीं है, किंतु जो सुना हुआ है उसके विषय में संशय तो होगा आपको। हाँ, ये जो ब्रह्मा और आत्मा, आत्मा ही क्या है ब्रह्म है, ऐसा आपने श्रवण कर लिया, करने के बाद बोध हो गया, किंतु आपके मन में संशय भी तो हो सकता है कि नहीं ये आत्मा ब्रह्म है कह रहे, हो सकता है ब्रह्म न होकर के और कुछ हो सकता है, आत्मा शरीर भी हो सकता है, आत्मा और भी कुछ हो सकता है। ऐसा यदि संशय होगा तब मनन करता, किंतु मुझे संशय भी नहीं ना, जिस आत्मा और ब्रह्म के विषय में जो सुना है कि आत्मा और ब्रह्म एक है, ये जो मैंने श्रवण किया, इस श्रवण होने के बाद इसमें मुझे तनिक भी संशय नहीं है। संशय न रहने के कारण अब मुझे उसका मनन भी बनता नहीं है, मनन क्रिया मेरे द्वारा बनती नहीं है। संशय बनतो मनन कुर्वन्तु, जिसको जिसको संशय वो मनन कर ले, मुझे कोई संशय नहीं है। ऐसा ज्ञानी क्या है उसका निर्णय होता है, निश्चय होता है। इसलिए क्या है ज्ञानी और अज्ञानी में वैलक्षण्य बता रहे थे ना, ज्ञानी और अज्ञानी में अर्थात कर्म करने वाला, साधना करने वाला और ज्ञानी, इनमें क्या विषमता है। ज्ञानी इससे विलक्षण है, यही दिखा रहे, ज्ञानी की यही विलक्षणता है कि वो अपने आप में उसका एक निर्णय होता है, मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा, मैं ही परमात्मा हूं, मेरे से परमात्मा अलग नहीं है, मैं ही क्या है ब्रह्म हूं। ये ज्ञान होने के बाद वो श्रवण उसका समाप्त हो जाता है और मैं ब्रह्म हूं इसके विषय में संशय न रहने के कारण उस विषय में उसका मनन भी नहीं बनता है। मम तु उभय अभावात न उभयत्र प्रवृत्ति, मेरी तो जो है मेरे में दोनों का अभाव है, किसका, ब्रह्म आत्मा का जो ऐक्य रूप जो अज्ञान उसका भी अभाव है, और जो उस ब्रह्म और आत्मा की ऐक्य का जो ज्ञान है उसके विषय में मुझे संशय का भी अभाव है, इसलिए दोनों बातें मुझ में बनती नहीं है, अर्थात श्रवण रूप क्रिया और मनन रूप क्रिया वो बनती नहीं है। अब कहते चलो ठीक है भाई, श्रवण मनन नहीं बनता है तो निधि ध्यासन तो करना चाहिए ना, निधि ध्यासन भी तो क्रिया ही है, वो तो बननी चाहिए, आपने बनती है। तो कहते हैं मां भूताम श्रवण मनने, आपकी जो है श्रवण और मनन रूप क्रिया न हो, किंतु विपर्य निराशार्थम, जो विपरीत तो भावना है, जैसे मैं आत्मा हूं, ये क्या है विपरीत भावना है, सही भावना है कि तो मैं शरीर हूं, ये विपरीत भावना है ना, अर्थात हम अपने स्वरूप को अलग ही कुछ समझे, वो भी विपरीत भावना है। ये कहते आपने श्रवण कर लिया, आपको क्या है बोध हो गया और मनन समाप्त हो गया, क्यों, क्योंकि आपके भीतर संशय नहीं रहा, किंतु विपरीत भावना तो आपके भीतर में रही होगी। जैसे अब हम लोगों ने श्रवण कर लिया, अब मैं आत्मा हूं ये श्रवण कर लिया, अब बोध हो गया थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, अब हमें कोई संशय भी नहीं है, तो संशय नहीं तो मनन भी नहीं बना, किंतु हमारे भीतर अभी विपरीत भावना तो बची रही होगी, तो उसके लिए तो आपको निधिध्यासन करना होगा। तो निधिध्यासन तो क्रिया है, तो ज्ञानी के लिए क्रिया बनती है, और आप तो कहते हैं ज्ञानी निष्क्रिय है, ये संभव नहीं है, वही कह रहे हैं। विपर्य निराशार्थम निधिध्यासनम कर्तव्यम, उसको तो निधिध्यासन बनता ही है, इसको ज्ञानी को, क्योंकि विपरीत भावना रही होगी। इति आशंका, ये शंका है कि ज्ञानी को क्या है निधिध्यासन रूप तो क्रिया बननी चाहिए, क्यों, क्योंकि उसके भीतर विपरीत भावना रही होगी, इसलिए क्रिया तो होनी चाहिए। कहते हैं देहादौ आत्मबुद्धि लक्षणस्य विपर्यस्य अभावात् तदापि न अनुष्ठेयम्। ये कह रहा है उस ज्ञानी में क्या है देहात्म बुद्धि, अर्थात इस शरीर में आत्मबुद्धि का अभाव होने के कारण विपर्य जो है, विपर्य क्या चीज है, देह में आत्मबुद्धि करना, यह विपर्य है। तो ऐसा जो देह में आत्मबुद्धि रूप जो विपर्य है, उस विपर्य का ज्ञानी में क्या अभाव है, अर्थात वो कभी भी इस शरीर को मैं हूं यह ऐसा स्वीकार करता ही नहीं, वो अपने आप को क्या स्वीकार करता है, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये क्या है वो देखता है, ये अनुभव करता है। तो अब विपरीत भावना नहीं रही ना, विपरीत भावना तो तब बनती, मैं आत्मा हो करके मैं शरीर मानते तब वो विपरीत भावना कहलाती, किंतु ज्ञानी में क्या है, ज्ञानी आत्मा है तो अपने आप को आत्मा ही मान रहा है, वो ब्रह्म है तो अपने आप को ब्रह्म ही स्वीकार कर रहा है, तो विपरीत वो स्वीकार नहीं कर रहा है। हाँ ब्रह्म होकर के यदि क्या है अब्रह्म समझता अपने आप को, अर्थात अनात्मा समझता, आत्मा होते हुए अनात्मा समझता, तो विपरीत भावना हो जाती, किंतु वो भावना नहीं है। ये भावना न होने के कारण, ऐसा न होने के कारण कहते न अनुष्ठेयम्, उसमें अनुष्ठान बनता नहीं। कौन सा अनुष्ठान, निधि ध्यान रूप अनुष्ठान उसके द्वारा बनता नहीं है, अर्थात क्रिया बनती नहीं है। क्रिया को लेकर प्रश्न उठा था, अर्थात उसके भीतर कोई भी क्रिया नहीं है, दूसरे के आरोप करने से क्या है वो क्रियावान सिद्ध होता नहीं है। चलिए आगे के विषय में कल कर लेते हैं। हरि ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।